से भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं। भक्ति का स्वरूप कैसा हो और भक्ति की हमारे भीतर महिमा किस तरह की हो, यदि इस बात पर हम गौर से विचार करें तो हमारी वो भक्ति भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारी मदद कर सकती है। भक्ति का स्पष्ट सा स्वरूप है कि भक्ति वितरागता की होनी चाहिए और भक्ति की महिमा ही ये है कि उससे जीवन में वितरागता आती है। ये तो अपन ने एक मिनट में विचार कर लिया, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें और अधिक गहराई में जाकर के विचार करना पड़ेगा कि यदि भक्ति वितरागता की है तो वितरागता वो कैसी है, और इतना ही नहीं, वो वितरागता आएगी कैसे, या वो वितरागता जिन्होंने प्राप्त की उन्होंने उसको कैसे प्राप्त किया, इस पर भी हमें विचार करना। और जैसे जैसे हमारे जीवन में वितरागता आती चली जाएगी, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वे परिवर्तन नहीं होते हैं तो हमें उसके लिए सावधानी पूर्वक फिर से रीऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मेरी अपनी भक्ति की प्रक्रिया में कहां कौन सी चूक हो रही है। हमने पिछले दिनों तीन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि हम सबसे पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन करें, वो वितराग स्वरूप है। तो जैसे जैसे हम उस स्वरूप का दर्शन अपने भीतर महसूस करते जाएंगे, और इतना ही नहीं, उनके स्वरूप से जिस दिन हमें संदेश मिलना शुरू हो जाएगा, और इतना ही नहीं, जिस दिन उस संदेश के अनुरूप हमारे मन में अपने जीवन को बनाने की भावना उत्पन्न होगी, उस दिन हमारी भक्ति पूरी होगी। भगवान के स्वरूप का दर्शन, उनके स्वरूप से मिलने वाला उपदेश, और इतना ही नहीं, उस उपदेश के द्वारा हम अपने जीवन को भी उनके जैसा बनाने की भावना, एक लगन अपने भीतर पैदा कर सकें। अभी और वैसा बनना शुरू नहीं किया है, सिर्फ उनके स्वरूप का दर्शन, उससे मिलने वाला उपदेश, और इतना ही नहीं, वैसी वैसी हमारे भीतर भावना बननी शुरू हो जाए। अभी तो हमने, आपने कहा, आपने सुना और हमने कहा हमारी भावना है भगवान बनने जैसी, इतने से नहीं होगा काम। वो हमारे भीतर से उत्पन्न होनी चाहिए, वो हमारे भीतर इस तरह की लगन पैदा होनी चाहिए। और जैसे ही हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं हमारे भीतर एकाग्रता आनी शुरू होती है। बिना एकाग्रता के भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, और हम लोगों की एकाग्रता नहीं बन पाने से फिर हमें उससे मिलने वाला संदेश भी सुनाई नहीं पड़ता। भगवान का स्वरूप का दर्शन हमें क्या संदेश दे रहा है, जब जैसे कि किसी चीज को अपन को सुनना हो, कोई बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही हो और अपन को सुनना हो, तो अपन क्या कहते, भी ये थोड़ा हल्ला मत करो, थोड़ा शांति से सुनने दो, क्या क्या कहा जा रहा है। तो फिर कितनी कितनी गौर से उस चीज को सुनते हैं, आसपास का सारा कोलाहल मिट जावे, बाहर का भी और भीतर का भी। ये जरा कठिन मामला है। बाहर का कोलाहल तो हम मंदिर के बाहर छोड़ करके आए हैं और पुण्य स्थल में प्रवेश कर रहे हैं, सो अपने आप ही बाहर के पाप से हम निवृत्त हो गए हैं, लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे भीतर से वो बात जानी ही पाती। बाहर से तो हम कोलाहल को छोड़ देते हैं, बाहर से तो हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भीतर होने वाले जो कर्मों के उदय के राग द्वेष से हम बच नहीं पाते, और जब तक हमारे मन में वो विकल्पात्मक स्थिति बनी रहती है, मन में कोलाहल मचा रहता है, तब तक ठीक से भगवान का मिलने वाला उपदेश हम सुन ही नहीं पाते। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करते समय मैं भगवान के साथ इतना एकाकार हो जाऊं कि मेरे अंतरंग में उठने वाले राग द्वेष रूपी विचार भी उठें तो उठें, लेकिन मेरे चित्त की भूमि को मलिन न कर पाए। ये चीज जो है वो बहुत हमें विचार करके और अपने जीवन में लानी चाहिए। ऐसी एकाग्रता हमारी सदैव कि बाहर का ही कोलाहल नहीं, भीतर मचने वाला उठने वाला विचारों का और भावों का कोलाहल भी धीरे धीरे शांत होता चला जाए, तब जाकर के हम कह पाएंगे कि हाँ, अब भक्ति हमारी शुरू हुई है। एक सामायिक करने वाले व्यक्ति बाहर कहीं पर गर्मी होगी तो बाहर ऐसा चटाई बिछा करके अपनी सामायिक कर रहे थे। अब सामायिक कर रहे हैं और चटाई तो इतनी बड़ी बिछी है कि जिसमें चार आदमी बैठ जाए और एक व्यक्ति बैठेगा तो बाकी चटाई तो खाली रहेगी रहेगी। अब क्या हुआ कि संध्या का समय है, वे तो अपनी सामायिक में, प्रार्थना में, भगवान की भक्ति में, स्तुति में, जो कहना हो, सब में लीन है। और उतने में क्या हुआ कि उसी रास्ते से, चूंकि वो आने जाने का रास्ता था जिस पर वो बैठे थे, वहां से एक माँ दौड़ती हुई आई और उनकी चिटाई पर कब उसका पैर पड़ गया और वो आगे निकल गई। ये तो सामायिक में होते हुए भी बौखला गए, चिल्ला पड़े, दिखता नहीं है तेरे को, मेरी चिटाई पर से जो कि पूजा की पवित्र चिटाई थी उस पर से पैर रखकर की तो निकल गई। भाषा भी ऐसी देखो तो, सामायिक करने वाले की ऐसी भाषा, पूजा भक्ति करने वाले की ऐसी भाषा, ऐसे वचन, तब तो इसका मतलब है अभी अभी तो पूजा वाणी से भी नहीं हो पाई है, अभी तो मन से करना बहुत दूर है। और ऐसी भाषा बोल दी, कलुषित मन भी हो गया। वो अम्मा थोड़ी दूर जाकर के उसको शायद याद आए कि हाँ, सचमुच कुछ गड़बड़ हो गई है, जो पंडित जी साहब हैं, जो भी हैं, जो सामायिक कर रहे थे, त्यागी जी, हो सकता मेरी गलती हुई हो, तो 10 कदम जो आगे निकल गई थी लौट कर आई कि भगवान गलती हुई, क्षमा करना, सचमुच मैं देख नहीं पाई, मुझे तो इस समय एक ही चीज दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रहा है तुझे? मेरी चिटाई नहीं दिखाई पड़ी? क्या बताऊं भगवान, सुबह का मेरा छोटा सा बालक खोया हुआ है, शाम हो गई, सब दूर खोज खोज करके हार गई हूँ। मुझे तो इस समय सिर्फ अपने बेटे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा, पर मुझे तो आश्चर्य ये है कि भगवान की भक्ति पूजा करने वाले आपको भगवान से ज्यादा मैं कहाँ से दिख गई? आपको तो पूजा भक्ति करते समय भगवान दिखना चाहिए था और मैं बीच में से निकली और आपको दिखाई पड़ गई। इसका मतलब आपको अभी भगवान भगवान दिख नहीं रहे, भगवान दिखने का नाटक कर रहे आप आंखें मीच करके। अगर भगवान सचमुच दिख रहे होते, मुझे मेरा बेटा दिखाई पड़ रहा है इस समय, इसलिए आपकी चिटाई दिखाई नहीं पड़ी। अगर आपको भगवान दिखाई दिए तो आपकी चिटाई पर से मैं निकली, ये दिखाई कैसे पड़ी? लेकिन इतनी इतनी छोटी सी बात एकाग्रता की अपने समझ में नहीं आ पाती। अपने को तो जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय भी जो है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कैसे करी, किसने कैसे नहीं करी, किसको कैसे करना चाहिए, अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने, तो मेरी छू ही लिया सब कुछ, ऐसा दिखाई पड़ता है। मुझे भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, बाकी सब संसार क्या करें, संस्कार ही ऐसा है। पर उसने संस्कार को तोड़ना तो पड़ेगा। विनोबा जी हमेशा कहा करते थे, उनकी नानी एक बार तीर्थ यात्रा गई थी, 80 साल की तो हो गई, 40 वर्ष की थी जब गई होंगी तीर्थ यात्रा, और उस तीर्थ यात्रा में उन्होंने अपने सोने के कंगन उठार के रखे होंगे और कोई चुरा के ले गया। अब चुरा के ले गया, लेकिन जब जब जिस जिस से मिलती थी तो यही कहती थी, मैंने तीर्थ यात्रा करी, बड़े अच्छे दर्शन थे, लेकिन मेरे सोने के दोनों कड़े वहीं किसी ने चुरा लिए। जिससे जब मिलेंगी, किसी किसी से तो कहो दिन में 10 बार मिले तो उससे 10 बार कहती थी, भूल जाती थी कि मैंने तो अभी तो कहा था। उनको एक ही बात ध्यान में रहती थी, तो विनोबा कहते थे, मैं तो भगवान से प्रार्थना इतना ही करता हूँ कि हमारी नानी जी को जो है जीवन के अंत में और कुछ याद रहे तो रहे, कम से कम जी बात भूल जाए वो कि मेरे चोरी चले गए थे। लेकिन जाती नहीं जी से वो बात, संसार की चीजें हमारे मन से निकाल पाना बहुत कठिन है, और अपने हृदय में भगवान की भक्ति की एकाग्रता प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि संस्कार तो उन्हीं चीजों का है। देखो तो दुनिया में कितनी कितनी चीजें हमें याद रहती हैं। आचार्य श्री तो हमेशा कहते कि देखो कितनी हमारा क्षयोपशम है लोगों का, और कहते कि हम तो भक्ति भूल गए, कि आज हमारा व्रत था यही भूल गए, कि आज चौदस थी यही भूल गए। ऐसा तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कितना दुनिया में याद रखते हैं वो हमेशा उदाहरण देते कि एक मेडिकल स्टोर वाले के पास में कितने किस्म की दवाइयाँ रखी, हजारों प्रकार की, और जैसे ही वो कैसे भी लिखाई में आ जावे, आड़ी टेढ़ी कैसे भी लिखा हो, जल्दी से देखता है और फौरन उधर उसमें ऊपर निकाल करके तीसरी जमी हुई उसमें से निकाल के, और उसको ये मालूम है कि उस पत्ती में दो और बची, इतना तक मालूम उसको, वहां से वो निकाल के ले आता और दे देता। इतना कंसंट्रेशन, इतनी एकाग्रता, संसार के कामों में इतनी एकाग्रता सद जाती है भगवान के स्वरूप के दर्शन करने में, और उससे मिलने वाले उपदेश में भी इतनी ही एकाग्रता अगर सद जावे तो हमारी भक्ति भी हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आसानी से कर सकती है। पहली चीज अपन को ये ध्यान में रखनी चाहिए, और दूसरी चीज कि हम भक्ति में इतने अधिक तल्लीन हो जाएं कि फिर हमें भगवान के अलावा दूसरी चीज दिखाई ही ना पड़े, लॉ ऑफ एसोसिएशन। और इतने ही नहीं, जिन क्षणों में दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उतने ही देर नहीं, फिर हम उस भक्ति और उस दर्शन से 24 घंटे जुड़े रह सकें, वो जुड़ाव इतना अधिक प्रगाढ़ हो जावे कि फिर वो मन से हटेगी ना। जैसे कि मानस खम में भगवान की निकटता या उपस्थिति हमारे कषायों को मंद करती है, ऐसे ही भगवान की उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जब हम मंदिर से या भक्ति से बाहर आवें, तब भी भगवान के उस स्वरूप को अपने हृदय में बना करके रखें। एक दिन हमने जरा सा टच किया था इस बात को, लॉ ऑफ एसोसिएशन वाली बात को, या कि दूसरे शब्दों में अपन कहें कि हमारा किसी के साथ होना और किसी का हमारे साथ होना, दोनों में एम्फेसिस में कितना फर्क है। इसके लिए भी एक छोटी सी घटना से अपन समझें तो शायद समझ में आए कि हमें हमेशा भगवान को अपने साथ फील करना चाहिए। ये चीज धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी, हमें प्रयत्न करके इस चीज को लाना पड़ेगा। जो भी भक्ति में रुचि रखते हैं, जिनके पास और ज्यादा ज्ञान नहीं है, अपन सबके पास वैसे भी उतना ज्ञान कहाँ है, वास्तविक जो ज्ञान है जिससे कि आत्म कल्याण हो सकता है, उतना श्रेयोपम अपने पास कहाँ है भैया। थोड़ा बहुत है अपने पास ज्ञान, वो भी हमारा दोस्त कहाँ रहता है, वो भी संसार में ज़्यादा लग जाता है। ऐसी स्थिति में तो सहाई हमारे लिए भक्ति ही है। हमारे भक्ति के माध्यम से भी हम भले ही अल्प ज्ञान हो, अपने जीवन को अच्छा बना सकते, ऐसा विचार करके। और हमें ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि भक्ति के मायने ये है कि हम भगवान की प्रेजेंस हमेशा फील करते रहें, आड़े समय में भी और भले समय में भी, दोनों स्थितियों में ये बात हमारे मन में बनी रहे। क्योंकि प्रेजेंस का फर्क बहुत पड़ता है। एक बाबा जी अपने शिष्य के साथ में जंगल से चले जा रहे थे। अब जंगल से जाते समय और रास्ते में एक पेड़ के नीचे, और ध्यान का समय हो गया, भक्ति का समय हो गया, तो बैठ गए और अपने शिष्य से कहा कि देखो, कोई उपद्रव हो तो सावधान रहना, जंगल का मामला है, शेर वेर भी आ सकता। उसने कहा शेर आ सकता है? घबरा गया वो, फिर भी बैठ गया दम साधे बाबा जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ, कि चलो अपन भी भक्ति कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते, संध्या का समय हो गया है। बैठे और उतने में जो है सचमुच में शेर के आने की आवाज सुनाई पड़ी, उसकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अब तो घबराया वो और फौरन दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बाबा जी जाओ, है कि नहीं? सबको छोड़ देते हैं अपन विपत्ति में, कम से कम सबसे पहले तो भगवान ही को छोड़ते हैं, और बाकी छूटे चाहे नहीं छूटे, विपत्ति आने से पहले ही। और किसकी मदद ढूंढते हैं अपन? सारे संसार की मदद ढूंढते हैं कि इस विपत्ति से बचाने में ये सब सहयोगी होंगे। धर्म ध्यान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, भगवान की तरफ, सच्चे देवगुरु शास्त्र की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। उनकी प्रेजेंस हमें साहस नहीं दे पाती, क्योंकि हम उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं कर पाते। अब बाबा जी तो ध्यान में लीन है, शेर आया, शेर ने आसपास देखा कि बाबा जी ध्यान में लीन है, उनके चक्कर लगाए, उनको सूंघ करके वापस चला गया। शिष्य बड़ा प्रभावित, ऐसे चमत्कारों से बहुत प्रभावित हो, अरे वाह, क्या मेरे गुरुजी का भी चमत्कार है, शेर आया और सूंघ सांग के चला गया, कुछ भी नहीं किया। अब तो पहले तो उसको ऐसा लग रहा था कि कैसे गुरुजी हमें और दिक्कत में फंसवा दिए, और अब नीचे उतर करके चरणों में साष्टांग कि धन्य हो गुरुजी, आपकी महिमा आज समझ में आई हमको, अब तो नहीं छोड़ूंगा आपको, अभी तो 5 मिनट पहले छोड़ दिया था, ये बात अलग है, लेकिन अब फिर कह रहा है कि अब नहीं छोड़ूंगा आपको कभी। अब गुरुजी के पीछे पीछे जा रहा है, और अचानक एक जो है वो बड़ी सी वो होती ना मक्खी, मधुमक्खी बोलते जिसको,
हाँ
वो मधुमक्खी आ गई और मधुमक्खी आकर के और गुरुजी के ऊपर बैठी और काट दिया गुरुजी को। गुरुजी बहुत जोर से चीखे चिल्लाए, वहीं पर बैठ गए। अब तो शिष्य फिर गड़बड़ में आ गया कि ये वो ही गुरुजी है, अभी इतनी महिमा देखने में आई इनकी कि शेर भी आ गया तो भी शांति से बैठे थे बिल्कुल एकदम, और इतनी सी मधुमक्खी ने आकर के काट दिया तो इन्होंने हाय तुबा मचा दी और बैठ भी गए, और अब कह रहे हैं कि चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसने पूछ ही लिया कि गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अभी जब शेर आया था तब तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और जरा सी मक्खी ने काट दिया। बोले हाँ क्या करें, जब शेर आया था उस समय तो भगवान मेरे साथ था और अब मक्खी ने काटा उस समय तो तुम मेरे साथ हो, गड़बड़ ये है। भगवान जब मेरे साथ में रखता हूँ तब बहुत सी विपत्तियों से पार हो जाता हूँ, और जब मैं दुनिया के साथ होता हूँ तब तो मेरा साहस गड़बड़ा जाता है। लेकिन अपने साथ उल्टा है, अपन को लगता है कि जब हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का सहारा लेंगे तो शायद हमारी विपत्ति से हम नहीं बच पाएंगे। भक्ति में ये जो कच्चापन है, यही कच्चापन तो हमारे अपने जीवन में साहस और दृढ़ता नहीं लाने देता, यही तो हमारी अपनी श्रद्धा और भक्ति को ऊंचा नहीं उठने देता है। ये अपने को कच्चापन निकाल देना चाहिए। हमने जिसको एक बार अपने जीवन में शरण मान लिया है, एक बार जिसका सहारा ले लिया है, देखें अपन वादीराज महाराज ने कैसे सहारा लिया और इतनी विपत्ति आने पर भी किसी से कोई याचना नहीं की, यहाँ तक कि जिसके प्रति उनकी अगाढ़ श्रद्धा है ऐसे वीतराग भगवान से भी याचना नहीं कर रहे हैं, वे तो सिर्फ अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, और भक्ति व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही सद्य पुंसाम निर्वधिरुजा धूलि बंधम धिनोति ध्याना भूतो हृदय कमलम यस्तितु तम प्रविष्ट तस्या शक्या कही भुवने देव लोकोपकारा। भगवान मैंने तो ऐसा सुन रखा है आपके बारे में, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़ी एकाग्रता उनकी सद गई है, वो भगवान की प्रेजेंस भी फील कर रहे हैं। जो प्रेजेंस फील करेगा वही ऐसे डायलॉग कर सकेगा भगवान से, बढ़ना नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि भगवान मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि आपके हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही, ये जो आपकी एकदम पर्वत के समान ऊंची देह, जैसे पर्वत से हवाएं टकरा करके गुजरती हैं, ठीक ऐसे ही आपकी पर्वत के समान अत्यंत उन्नत और ऊंची देह, इससे टकरा करके जो हवाएं गुजर रही हैं वे क्या करती हैं? पर्वत से टकराने वाली हवाएं क्या करती हैं? वे जितनी भी धूल है उसको उड़ा करके ले जाती हैं। ठीक इसी तरह आपके शरीर से टकरा करके जो हवा आती है वो हवा तक लोगों के शरीर में व्याप्त होने वाले रोग रूपी धूली को उड़ा करके ले जाती। देखना जैसे पर्वत से टकराकर बहने वाली हवा धूल को उड़ा ले जाती है, ऐसे ही आप तो पर्वत के समान स्थिर एकाग्र अपने आप में आत्मस्थ लीन हैं और अत्यंत ऊंचे हैं, ऐसे आपके स्पर्श पाकर के जो हवा बहती है वो हवा अगर किसी के शरीर से टकरा जाए तो उसके रोग रूपी धूली को उड़ा के ले जाती है। अब ऐसा हमने आपके बारे में सुना है भगवान, और हमने क्या किया है? हमने तो इतने ही भर किया है कि ध्याना हूतो हृदय कमलम यस्तु तुम प्रविष्टा। हमने तो अपने ध्यान के द्वारा, हमने तो अपनी भक्ति की एकाग्रता के द्वारा सिर्फ आपको अपने हृदय कमल पर आकर के विराजमान भर किया है। अब आप ही बताओ भगवान, हम आप ही से पूछ रहे हैं,
हमने जब आपके बारे में इतनी प्रशंसा सुनी है और आप जब हमारे एकाग्रता से, हमारे ध्यान और भक्ति से हमारे हृदय कमल में आकर के विराजे हो, तो भगवान जितनी भी कर्मों की धूल है वो अगर हमारी हट जावे और संसार के द्वारा हमारा उपकार हो जावे, तो इसमें और कौन सी विशेषता है? इसमें तो मुझे कोई विशेष बात दिखाई नहीं पड़ती है, ये तो बहुत सहज है, ये तो हो ही जाएगा। कल सवेरे जब राजा आएंगे तब तक मेरी देह से अगर ये रोग रूपी धूली निकल करके और उड़ जाएगी और कर्म भी मेरे असाता नष्ट हो जाएंगे और साता के उदय में अगर देह सोने की हो जाए और उस सेठ जी का काम बन जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेठ जी का काम बनवा दो या मेरी देह को सोने का कर दो या कि धर्म की प्रभाव ना कर दो। मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ, वो तो हो ही जाएगा, सो डेफिनेट। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी एकाग्रता और मेरी श्रद्धा मुझे ये कहने को बाध्य कर रही है कि ये सारी चीजें अत्यंत सहजता से हो जाएं। ऐसा क्या हमारे मन में भी विश्वास, ऐसा ध्यान, ऐसी ध्यान की एकाग्रता हमारे मन में सद सकती है क्या? अगर अपन रोज रोज अभ्यास करें, प्रयास करें, तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है भैया कि हम भक्ति के द्वारा भी अपने कर्मों को हटा करके, जो हमारे भीतर पड़े हुए खोटे संस्कार हैं उनको हटा करके अपने जीवन को निर्मल ना बना सकें। हम इस तरह का अभ्यास करें कि रोज रोज हमारी मलिनताएं भक्ति के द्वारा कम होती चली जाएं और हमारे जीवन में निर्मलता जो हमारी स्वाभाविक है वो प्राप्त होती जाए। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है। निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ, जाने
महाराज के परम सत्य एक साथ प्रभु के श्री समाधान महाराज प्रभु के एक साथ भव्य साहब महाराज के चरणों में अर्घ्य हम लोग आओगे।